आकांक्षा के मुंह से राजकुमार रिवांश का नाम सुनकर जानवी हैरानी से उसे देखने लगी, जबकि आंखें बंद करके उन दृश्यों को देखने के बाद आकांक्षा का सिर बुरी तरह चकराने लगा। जानवी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसने बिल्कुल धीमी आवाज में सिर पकड़कर बोला। मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। जानवी, जानवी। जानवी उसे बीमार देख बुरी तरह घबरा गई। क्या हुआ तुझे अक्षु? मैंने पहले ही कहा था कि इन सब बकवास के पीछे नहीं भागते हैं, ये सब चीज़ें हमारी पहुंच से परे हैं। जानवी ने उसे पानी पकड़ाया। तू पहले ये पानी पी, फिर हम यहाँ से घर चलते हैं और छोड़ते हैं इन सब झंझटों को। आकांक्षा ने पानी पिया। आकांक्षा अक्सर बंद आंखों से देखे विजुअल्स को भूल जाती थी, और अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ जो भी हुआ उसे वो कुछ भी याद नहीं था। मैंने कुछ कहा जानवी, तूने सुना क्या? आकांक्षा ने सिर पकड़कर पूछा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं इन अक्षरों को फिर से छूकर देखती हूँ। जैसे ही आकांक्षा ने उस किताब के अक्षरों को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जानवी ने तुरंत किताब बंद करते हुए कहा, अब तू इस किताब को हाथ भी नहीं लगाएगी, चल चलते हैं यहाँ से, हमें कुछ पता नहीं लगाना, ना किसी पिशाच के बारे में और ना ही किसी राजकुमार रिवांश के बारे में। हड़बड़ाहट में उसके मुंह से राजकुमार रिवांश का नाम निकल गया। हाँ, राजकुमार रिवांश, यही नाम था, शायद वो जंगल में हो, मैंने इसी का नाम ही तो बोला था। हे भगवान, ये लड़की खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। जानवी उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगी। मुझे कुछ पता नहीं लगाना, तू घर चलेगी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दद्दू को सब सच सच बता दूंगी। मैं घर चल लूंगी, लेकिन तू मुझे दद्दू का नाम लेकर ब्लैकमेल मत कर, तुझे पता है ना मेरी आदत कि एक बार जब मैं किसी, जानवी ने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ हाँ मेरी माँ, मुझे सब पता है कि एक बार आकांक्षा मैडम अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो जब तक उसकी बाल की खाल ना निकाल लें तब तक उन्हें चैन कहाँ मिलता है। बिल्कुल सही कहा, चल अब घर चलते हैं और वहाँ जाकर आगे का प्लान बनाते हैं, और खबरदार अगर तूने दद्दू को कुछ भी बताया, वरना मैं भी बता दूंगी कि कैसे उन्हें तू उनको बेवकूफ़ बनाकर मेरा फ़ोन घर पर रखवा कर मुझे सब जगह लेकर जाती है। आकांक्षा ने झूठा गुस्सा दिखाया। जानवी ने जाते समय एक हवलदार से कहा, सर हम लोग जा रहे हैं, ये कुछ किताबें हैं वो आप दुबे अंकल को दे दीजिएगा। ठीक है, आप ये किताबें यहीं रख दीजिए, दुबे सर अभी आते ही होंगे, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगा, हवलदार ने जवाब दिया। आकांक्षा और जानवी वहां से सीधे घर पर आ गईं। घर पर उन्होंने देखा कि राजवीर जी दरवाजे के बाहर उनका इंतजार करते हुए इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन दोनों को देखते ही राजवीर जी ने नाराजगी जताते हुए कहा, आ गए तुम दोनों, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम दोनों का ध्यान पढ़ाई में कम और इधर उधर की बातों में ज्यादा रहता है। जानवी, कब वापस आ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा? देखो मैं अक्षु को अब और तुम्हारे पास यहाँ नहीं छोड़ सकता, अगर तुम्हें अकेले डर लगता है तो तुम हमारे घर पर रहने आ जाओ। दद्दू, उन्हें तो आने में अभी एक हफ्ता और लग जाएगा और मैं आपके घर पर रहने के लिए नहीं आऊँगी, आपका घर जंगल के पास है और जंगल में, जानवी बोलते हुए रुक गई। भले ही हमारा घर जंगल के पास हो जानवी, लेकिन जंगली जानवर हमारे घर पार्टी मनाने नहीं आते हैं। ऐसा करना, तू अपना घर लॉक कर दे और अपना सामान लेकर एक हफ्ते तक हमारे घर पर रहने के लिए आ जा। आकांक्षा ने बात को संभाला। हाँ जानवी, अक्षु बिल्कुल ठीक कह रही है, राजवीर जी ने आकांक्षा की हाँ में हाँ मिलाई। ओके दद्दू, मैं मम्मी को पूछकर बताती हूँ कि क्या करना है, कहकर जानवी अपनी मम्मी को फ़ोन करने के लिए अंदर कमरे में चली जाती है, जबकि राजवीर जी और आकांक्षा अभी भी हॉल में बैठे थे। राजवीर अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे, जबकि आकांक्षा के ख्यालों में अभी तक पिशाचों से जुड़ी बातें चल रही थीं। कौन हो सकता है ये राजकुमार रिवांश? ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार वहीं पर जा रहा है, कैसे पता लगाऊं इसके बारे में? इंटरनेट पर कुछ मिल सकता है क्या? अक्षु, राजवीर जी की एक बार बुलाने पर आकांक्षा ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने थोड़ा जोर से बोला, अक्षु। जी दद्दू, उनकी आवाज़ से आकांक्षा का ध्यान टूटा और उसने हड़बड़ाकर जवाब दिया, किसके ख्यालों में खोई हुई है? तेरी तबीयत तो ठीक रहती है ना आजकल, या फिर से वही अजीब अजीब सपने आते रहते हैं? राजवीर जी की बात सुनकर आकांक्षा ने सोचा, दद्दू वो सब मेरे सपने नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भाग सकती। आकांक्षा राजवीर जी को कुछ जवाब देती उससे पहले जानवी वहां पर आकर बोली, दद्दू, अक्षु, मामा ने मुझे परमिशन दे दी है आप लोगों के साथ रहने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि दिन में एक बार मैं घर पर आकर यहाँ सब कुछ ठीक है ये चेक करूँ, फिर जल्दी से अपना सामान लेकर आ जाओ, हम चलते हैं। राजवीर के कहते ही जानवी ने झट से जवाब दिया, मेरा सामान रेडी है दद्दू, चलिए चलते हैं, तुम दोनों घर लॉक करके आओ, तब तक मैं कार बाहर निकालता हूँ। आकांक्षा, दद्दू आप चले जाइए, हम दोनों स्कूटी से आ जाएंगे, बस आप जानवी का सामान अपने साथ में ले जाइए। ठीक है, लेकिन 10 मिनट के अंदर तुम घर पहुंचोगे, पता है ना यहाँ से हमारा घर सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर ही है, तो बेवजह कहीं पर भी नहीं रुकना है, राजवीर ने सख्ती से कहा। जी दद्दू, हम सीधे घर ही आएंगे, जानवी तू दद्दू को अपना बैग लाकर दे दे। आकांक्षा के कहते ही जानवी ने अपना सामान राजवीर जी को लाकर दे दिया, जिसे लेकर वो तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही जानवी ने पूछा, अक्षु तूने दद्दू को पहले घर पर क्यों भेजा? जरूर तेरे दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, देख मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कोई जंगल वंगल में नहीं जाने वाली हूँ।
जंगल नहीं, मोहनदास जी के पास। मैं राजकुमार रिवांज के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। हो सकता है उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। उन्होंने काफी सारी किताबें पढ़ी हैं, तो इस राजकुमार के बारे में भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। जानवी, और दद्दू को क्या बोलेगी? उन्होंने अभी अभी कहा था कि 10 मिनट के अंदर हम घर पहुंचे। मैं दद्दू को बोल दूंगी कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। देख, इससे पहले कि हमें उस दिन की तरह आने में लेट हो जाए, पहले हम लाइब्रेरी जाकर आते हैं, आकांक्षा ने कहा। ठीक है, लेकिन इस बार दद्दू को फोन तू करेगी, मुझे उनसे बहस नहीं करनी। आकांक्षा ने राजवीर जी को फोन करके उनसे लाइब्रेरी जाने की परमिशन ली। राजवीर जी ने पढ़ाई लिखाई के मामले में उसे कभी कहीं जाने से नहीं रोका। आकांक्षा और जानवी बिना देर किए मोहनदास गुप्ता जी से मिलने लाइब्रेरी पहुंच गई। शाम के 4 बज रहे थे। आसमान सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था। भले ही जंगल के बाहर सूरज की रोशनी चारों तरफ छाई हुई थी, लेकिन जंगल के अंदर अभी भी वही घनघोर अंधेरा था, मानो रात के 12 बज रहे हों। ये कह पाना मुश्किल था कि वो अंधेरा सूरज की किरण ना पहुंचने की वजह से था या फिर वहां पर रहने वाली काली शक्तियों की वजह से। उस जंगल में काफी सारी अलग अलग प्रकार की काली शक्तियां निवास करती थी। जंगल में रिवांश, रघु, रवि, विजय और संजय के अलावा भी बहुत सारे पिशाचों का डेरा था। उन चारों ने सभी पिशाचों को वहां पर इकट्ठा कर रखा था। विजय ने गुर्राते हुए सबको संबोधित किया। आखिर कब तक आप लोग उस रिवांश की गुलामी करोगे? अगर हम सब एक हो जाएं, तो उसे हराने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तुम सब लोग समझते क्यों नहीं? हम बहुत सारे हैं और वो अकेला। हम सबके सामने वो कुछ नहीं कर सकेगा। भले ही वो शक्तिशाली है, लेकिन जब अकेला होगा तो उसे हराना आसान होगा, संजय ने विजय की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। वो चारों जंगल के पिशाचों को रिवांश के खिलाफ भड़का रहे थे।
रघु, उसे बहुत घमंड है खुद पर कि वो एक राजघराने से संबंधित है और खुद को हम सबका राजा मानता है। अरे, अब कोई राजघराना नहीं रहा, वक्त बदल गया है। और हम कोई इंसान नहीं जो राजघराने की परंपरा का अनुसरण करे। हम पिशाच हैं। हम सब सिर्फ एक के ही गुलाम हैं, और वो है शैतान। फिर पता नहीं क्यों तुम सब लोग उस रिवांश से डरते हो। अगर हम सब एक हो जाएं तो उसे हराना बहुत आसान होगा। पता नहीं तुम लोग समझते क्यों नहीं इस बात को, रवि ने बात खत्म की। उन चारों वैम्पायर्स ने मिलकर रिवांश के खिलाफ साजिश शुरू कर दी थी, ताकि रिवांश को कमजोर कर वो उसे खत्म कर सके। इसके लिए उन चारों ने बाकी वैम्पायर्स को भड़काना शुरू कर दिया। स्टार स्टार स्टार।